तुम? उसका ये रिएक्शन देखकर अर्पिता आंखें बड़ी बड़ी करके उसे देखने लगी। आप मुझे जानते हैं? अब उस लड़के के चेहरे के भाव कुछ सामान्य हुए। शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैं अनुदी का छोटा भाई। कानपुर में तुमसे मुलाकात हुई थी कुछ साल पहले। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि सामने खड़ा ये गबरू जवान, जिसने इतने लड़कों से अकेले भिड़ने की न सिर्फ हिम्मत दिखाई बल्कि सबको ढेर भी कर दिया और हमारी अप्पू को उनके घटिया इरादों का शिकार होने से बचाया, वो हमारा निशांत है, जो क्यूट से बच्चे से एक खूबसूरत चेहरे और दमदार पर्सनैलिटी वाला मर्द बन चुका है। हाँ, मर्द, क्योंकि जो औरतों की इज्जत करे, उनके मान की रक्षा करे, वही असली मर्द होता है। अर्पिता ने गौर से निशांत के चेहरे को देखते हुए अपने दिमाग पर जोर डाला। तब जाकर उसे कुछ साल पहले हुई निशांत से मुलाकात याद आई, पर उस निशांत और इस निशांत में इतना अंतर था कि उसे पहचानना जरा मुश्किल हो गया था। ओह सॉरी, मैं आपको पहचान नहीं सकी। वो असल में तब और अब में आप में काफ़ी चेंजेस आ गए हैं, शायद इसलिए। इट्स ओके, आप ठीक हैं? निशांत पहले सौम्यता से मुस्कुराया, फिर उसके चेहरे पर चिंता के भाव उभर आए और अल्फाजों में अर्पिता के लिए उसकी केयर झलकने लगी। जी, अर्पिता ने बेफिक्री से मुस्कुराते हुए हामी भर दी, जबकि निशांत की निगाहों ने सर से लेकर पैर तक उसे पूरा स्कैन कर डाला था। होंठ के किनारे से खून निकल रहा था, गोरे गाल पर उंगलियों के निशान छपे हुए थे, बांह और कोहनी पर कई खरोंचे थे, ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी वो, बाल बिखरे थे और कपड़े अस्त व्यस्त और गंदे, पर लब मुस्कुरा रहे थे और आंखें जुगनुओं सी चमक रही थीं। उसे इस हालत में देखकर निशांत की मुठ्ठियाँ कस गईं और इन सब के बावजूद उसे मुस्कुराते देखकर मन आश्चर्य से भर गया। बड़ी अजीब हो तुम, अभी इतना बड़ा हादसा होते होते बचा है तुम्हारे साथ, अपनी हालत देखो क्या हो रखी है, और तुम इन सब के बावजूद मुस्कुरा रही हो, तो क्या अब रो रो कर दिल्ली में बाढ़ ला दूँ? अर्पिता ने आंखें बड़ी बड़ी करते हुए बेपरवाही से सवाल किया और शरारत से अपनी आंखें मटकाने लगी। तुम्हें डर नहीं लगता? निशांत ने अचरज से सवाल किया और अर्पिता के मुस्कुराते लब कुछ सिमट से गए। डर लगता है ना? बहुत लगता है, लड़की हूं ना तो हर कदम पर एक अलग डर से सामना होता है, पर मैंने डर से डरना नहीं लड़ना सीखा है, और आज तो बहुत ज्यादा डर लगा था। अगर आप वक्त पर नहीं आते तो शायद आज मैं इन वहशी भेड़ियों का डिनर बन गई होती और कल ही हेडलाइंस में आता कि एक अकेली लड़की की सुनसान सड़क पर पांच लड़कों ने बड़ी ही बेरहमी से रेप करके उसे मौत के घाट उतार दिया। कुछ दिन बातें होती हैं, लोग कैंडल्स लेकर सड़कों पर निकलते हैं, अपना रोष प्रदर्शन करते हैं, कानून थोड़े हाथ पैर मारता है, फिर धीरे धीरे सब भूल जाते हैं। वैसे भी ये कोई बड़ी बात थोड़े ही है, आम सी ही बात है, ये तो होता ही रहता है। मेरे साथ भी हो जाता तो कोई अनोखी घटना नहीं होती। मुझे अपनी फिक्र भी नहीं, मर जाती तो मर जाती, पर मेरे बाद मेरी दीदी और पापा का क्या होता? वे मुझे उस हालत में देखकर कैसे जी पाते? यही सोचकर मेरी रूह कांप गई थी, पर आपने आकर सिर्फ मुझे ही नहीं, मेरी दीदी और पापा को भी बचा लिया। थैंक्स, थैंक्स अ लॉट। अर्पिता ने इतनी सहजता से ये सब बातें कही कि निशांत बस उसे देखता ही रह गया। उसके शब्दों में उसने डर महसूस किया था, आंखों में एक आग थी, रोष था और दिल में चिंता अपने परिवार की। अर्पिता ने उसे यूं खुद को देखता पाया तो एक बार फिर मुस्कुरा दी। आप तो कुछ ज्यादा ही सीरियस हो गए, मैं सच में ठीक हूँ, थैंक्स टू यू आज बच गई मैं। तुम इतनी रात को इस सुनसान जगह पर क्या कर रही हो? वो मैं कॉलेज ट्रिप पर गई थी, शाम को वापस कॉलेज लौटी। वैसे तो दी मुझे लेने आने वाली थी पर उनका फोन ही नहीं लग रहा था, शायद कहीं बिजी रही होंगी वो, इसलिए मैं खुद से ही घर के लिए निकल गई। मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि ये लोग मेरे पीछे पड़े हैं। यहाँ सुनसान जगह देखकर इन्हें हिम्मत और मौका मिल गया। अर्पिता ने दांत पर दांत चढ़ाते हुए उन लफंगों को भूरा। इतने में निशांत से अगला सवाल कर लिया, ये तुम्हारे पीछे क्यों पड़े थे? पुराना बदला लेना था मुझसे, मैंने इन्हें कुछ महीने पहले पुलिस में पकड़वाया था ना, इसलिए शायद मौके की तलाश में बैठे थे, आज मौका मिला तो बदला लेने चले आए। तुम ऐसे ही इन जैसे आवारा गुंडों से दुश्मनी कर लेती हो, तुम्हें डर नहीं लगता? वे कल को तुमसे बदला लेने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। लगता है ना डर, पर इनकी दुश्मनी से ज्यादा डर ये सोचकर लगता है कि अगर मैं अभी ही डर गई और गलत के खिलाफ आवाज नहीं उठाई तो आज जो किसी और के साथ हो रहा है कल को मेरे साथ भी हो सकता है। जैसे आज मैं किसी को मुसीबत में छोड़कर मुंह फेर कर चली गई, कल को मेरी बारी में बाकी सबने भी मुझसे मुंह फेर लिया तब क्या होगा? फिर मेरी दी कहती है कि अगर हम अच्छाई करें, किसी की मदद करें, तो हमारे साथ भी भगवान बुरा नहीं करते। अगर हम मुसीबत में पड़े किसी इंसान की मदद करते हैं तो जब हम मुश्किल में होते हैं तो हमारी मदद के लिए भी किसी को भेज देते हैं। जैसे उस दिन मैंने एक लड़की को इनसे बचाया था और जब मैं इनके चंगुल में फंसी तो भगवान ने आपको भेज दिया मेरी मदद के लिए। थैंक्स, थैंक्स अ लॉट। अगर आज आप वक्त पर नहीं आते तो शायद वे इंसान से हैवान बन गए होते और मैं उनके घटिया इरादों का शिकार बन गई होती। इट्स ओके, थैंक्स की जरूरत नहीं, तुम ठीक हो बस इतना बहुत है, पर थोड़ा अलर्ट रहा करो, रात के इस समय ऐसे सुनसान जगह से अकेले जाना सेफ नहीं है। निशांत ने एक बार फिर चिंता भरे स्वर में उसे समझाया और अर्पिता ने मुस्कुराकर हामी भर दी। निशांत ने उसे साइड होने को कहा और खुद उसका फोन ढूंढने लगा, जो कुछ ही देर में उसे मिल भी गया। और जब अर्पिता ने अपना फोन देखा तो उसकी चीख निकल गई और निशांत उसके अचानक चीखने से घबरा गया। ओ माय गॉड, मेरा न्यू फोन, क्या हालत हो गई है बेचारे की। अभी तक तो मैंने इसके फीचर्स भी ठीक से नहीं देखे थे। कितनी मिन्नतों के बाद तो दी ने मुझे ये मॉडल दिलवाया था, पर इन कमबख्तों के कारण बेचारा मेरा नया फोन शहीद हो गया। अब दीदी खूब डांट लगाएंगी मुझे। सत्यानाश हो इन सबका, इन सबकी हड्डी पसली भी ऐसे ही टूट जाए जैसे मेरा फोन टूट गया है। बेचारी अप्पू अपने नए नए फोन के स्वर्गवासी होने का शोक मना रही थी, उन लड़कों को जी भर भर कर कोस रही थी और अपने मोबाइल को अपने सीने से लगाए आंसू बहा रही थी। निशांत, जो पहले आंखों की पुतलियां फैलाए हैरान परेशान सा उसे देख रहा था, अब लबों पर हल्की मुस्कान सजाए बड़े ही प्यार से उसे निहार रहा था। अचानक ही उसके मन में कुछ आया और लबों पर बिखरी मुस्कान गहरी गई। दिखाओ तो मुझे, क्या हुआ है तुम्हारे फोन को? निशांत ने उसके हाथ से फोन लेकर देखा, जिस पर किसी ने बड़ी ही बेरहमी से खूब डंडे बरसाए थे और निशान उसके पूरे शरीर पर मौजूद थे। स्क्रीन पूरी खराब हो चुकी थी और बैक भी घायल था। बेचारा अपनी आखिरी सांसें ही ले रहा था। ये अर्पिता का ही काम था और वो जमकर उन सबको कोसने में लगी थी। आखिर हुआ तो सब उन्हीं की वजह से था ना। सर्विसिंग करवा लेना, ठीक हो जाएगा। और अब इसकी वजह से इतना परेशान मत हो, तुम सही सलामत हो, ये बड़ी बात है। फोन का क्या है, एक गया तो दूसरा आ जाएगा। एंड आई एम श्योर कि तुम्हारी दी भी यही कहेंगी, नहीं होंगी तुम पर नाराज, क्योंकि उनके लिए तुम्हारा सही सलामत घर लौटना इस फोन से कहीं गुना ज्यादा अहमियत रखता है। बात तो ठीक थी उसकी, उसकी सांत्वना का असर भी हुआ और अर्पिता कुछ शांत हो गई। निशांत ने उसका बैग उठाया और दोनों उस गली से निकलकर निशांत की बाइक के पास चले आए। बैठो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। अर्पिता बिना आनाकानी किए चुपचाप उसके पीछे बैठ गई, क्योंकि अभी ना तो वो खुद से चलने की स्थिति में थी और न ही बहस करने की हालत में। उनके वहां से निकलते ही साथ ही पुलिस वहां पहुंच गई और उन सबको जीप में भरकर चली गई।
अर्पिता के बताए रास्तों पर बाइक दौड़ाते हुए अचानक ही निशांत ने केमिस्ट की शॉप के आगे बाइक रोक दी और जब तक अर्पिता कुछ कहती उसे वहीं रोकने को कहकर खुद अंदर चला गया। कुछ देर बाद वो पॉली बैग में कुछ सामान लेकर आया और उसे अर्पिता को थमा दिया। इसमें बैंडेड, डेटॉल, ऑइंटमेंट, कॉटन पेन रिलीवर स्प्रे, गर्म पट्टी के साथ दर्द की दवाई भी है। घर जाकर जख्म साफ करके दवाई लगा लेना, पैर पर स्प्रे करके गर्म पट्टी बांध लेना, दर्द ज्यादा हो तो दवाई खा लेना, आराम मिल जाएगा और सुबह तक ठीक न लगे तो डॉक्टर को दिखा लेना। निशांत उसे इंस्ट्रक्शंस दे रहा था और अर्पिता आंखें बड़ी बड़ी किए टुकुर टुकुर उसके गंभीर चेहरे को देखे जा रही थी। अब मुझे देखना बंद करो और जो कहा है उसे याद रखना, निशांत ने हल्की नाराजगी दर्शाते हुए उसे टोका तो अर्पिता ने मुंह बनाते हुए अपना चेहरा फेर लिया। उसकी नाराजगी से फूले गाल देखकर निशांत के लबों पर सौम्य सी मुस्कान फैल गई। बाइक एक बार फिर स्टार्ट हो चुकी थी। निशांत की निगाहें रह रहकर सामने मिरर में दिखते अर्पिता के चेहरे पर ठहर रही थी, जबकि अर्पिता जाने क्या सोच रही थी, अपने ही ख्यालों में गुम वो आड़े टेढ़े से मुंह बना रही थी। कुछ देर बाद बाइक अप्पू के घर के बाहर रुकी। उसे खुद से चलने में प्रॉब्लम हो रही थी तो निशांत उसे सहारा देकर गेट तक लाया था और उसका ट्रॉली बैग भी उसी ने पकड़ा हुआ था। डोरबेल बजाई, कुछ ही मिनट बाद ही दरवाजा खुल गया। अर्पिता चहकते हुए सामने खड़ी राधिका के गले से लग गई और खुशी से चीख पड़ी, दीदी आई एम बैक, मैं वापस आपके पास आ गई और इन दोनों मैंने आपको बहुत 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 से भी ज्यादा मिस किया। ओ शिट, मैं तो भूल ही गई थी कि आज तो वापस आने वाली थी और मुझे तुझे लेने आना था। राधिका अचानक अर्पिता को अपने सामने देखकर बुरी तरह चौंक गई। आशुतोष जी के साथ हुए हादसे के कारण वो इतनी परेशान थी कि अर्पिता का ख्याल ही उसके दिमाग से निकल गया था और अब उसे अपनी लापरवाही पर गुस्सा आ रहा था। इट्स ओके दी, मैं खुद से आ गई। अर्पिता उससे दूर हो चुकी थी और अब भी मुस्कुरा रही थी। अपनी दी से मिलने की खुशी में वो अपनी हालत ही भूल गई थी, पर राधिका ने जब उसे इस अवस्था में देखा तो बुरी तरह घबरा गई। अप्पू, ये क्या हुआ तुझे, इतनी चोट कैसे आई तुझे? अप्पू का ध्यान अब खुद पर गया। पल भर को वो सक पकाई, फिर लापरवाही से बोली, कुछ नहीं दी, आते हुए कुछ पागल आदमी मिल गए थे, छोटा सा एक्सीडेंट हो गया, उसी में ये छोटी मोटी चोटें आ गईं, बाकी मैं एकदम फर्स्ट क्लास हूँ, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं। राधिका कमर पर हाथ धरे शक भरी नजरों से उसे घूरने लगी तो अप्पू ने तुरंत ही अपने बचाव में निशांत को आगे कर दिया, सच्ची दी ऐसा ही हुआ था, मैं झूठ नहीं बोल रही, अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं तो इनसे पूछ लीजिए, इन्होंने ही मुझे इन पागलों आदमियों से बचाया और घर तक भी लेकर आए। बोलते हुए अप्पू ने हैरान परेशान से खड़े निशांत की ओर नजरें घुमाते हुए इशारों में ही उसे सच बताने से मना कर दिया। राधिका का ध्यान अब अर्पिता के बगल में खड़े निशांत पर गया और चेहरे के भाव जरा बदले, आपको कहीं देखा है मैंने, आप तो, अरे दी ये अनुदी के छोटे भाई हैं, मिले नहीं थे हम इनसे जब अनुदी के घर गए थे? राधिका याद करने की कोशिश कर ही रही थी कि अप्पू झट से बीच में कूद पड़ी और खुद पर यूं इतराई जैसे बड़ा बढ़िया काम किया हो उसने। राधिका को अब जाकर याद आया, निशांत ने रिस्पेक्ट के साथ उसके आगे हाथ जोड़ दिए, अप्पू सच कह रही है? राधिका को अब भी अपनी बहन पर विश्वास नहीं था। ये देखकर अप्पू ने अपना सर पीट लिया और तिरछे निगाहों से निशांत को घूरने लगी। जी, वो ठीक कह रही हैं और चिंता की कोई बात नहीं है। लकीली मैं वक्त पर पहुंच गया था तो ज्यादा चोटें नहीं आई हैं। निशांत का जवाब सुनकर अप्पू ने गहरी सांस छोड़ी। राधिका की चिंता भी कुछ कम हुई और चेहरे पर कृतज्ञता के भाव उभर आए। थैंक यू सो मच अप्पू को सही सलामत घर तक लाने और उसे उन पागलों से बचाने के लिए। ये तो मेरा फर्ज था, आप थैंक यू कहकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। निशांत सौम्यता से मुस्कुराया तो अप्पू मैडम ने खुद से ज्यादा अटेंशन उसे मिलने पर चिढ़ते हुए मन ही मन उसकी नकल उतारते हुए मुंह ऐंठ लिया। आप अंदर आइए ना। नहीं, बस अब चलूंगा, दी इंतजार कर रही होंगी। आप जरा इनको देख लीजिए, ज्यादा चोट तो नहीं आई है, पर अगर लापरवाही करेंगी तो शायद परेशानी बढ़ जाए। निशांत ने विनम्रता से उसके आग्रह को ठुकराया और इजाजत लेते हुए वहां से निकल गया। जाते जाते उसने एक नज़र अर्पिता को देखा और हल्की मुस्कान उसके लबों पर उभर आई। टू बी कंटिन्यूड।